धवला पुस्तक पंद्रहवी लेक्चर नंबर पंद्रह ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य ओम सुतात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सवसाहुनं सयलिंदबिंदवंदिय मलिनंदिय भवपौमवनसंडम् अभिनंदनजिनाहम नमून उच्चम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा है इस 15वीं पुस्तक के, अभी हम पृष्ठ संख्या 65 पर आ गए। 65 यहाँ अभी हमारे काल की बात चल रही थी और ये काल की बात उत्तर प्रकृतियों में हम देख रहे थे। देखो पेज नंबर 61 से ये बात चालू हुई थी, एक जीव की अपेक्षा काल, जो हमने देखा था कि जो 12वें गुणस्थान में जाकर जिनकी उदीर्णा रुक जाती है 12वें के एकावली पूर्व यानी अंत में, ज्ञानावरण है, चार दर्शनावरण है, निद्रा प्रचला भी वहां पर लेना है और पांच अंतरा है, तो उनके उदीर्णा का काल अभोव्यों में तो अनादि अनंत होगा और भोव्यों में अनादि शांत होगा, इतना ही है। कुछ प्रकृतियां ऐसी है उसमें तो शादी शांत काल घटित होता है, तब वहां वो जघन्य और उत्कृष्ट की बात करेंगे, और इन प्रकृतियों में बस अनादि अनंत या अनादि शांत दो ही पॉसिबिलिटी विकल्प है। अब जो तीन निद्रा है तो उनकी उदीर्णा पहले दूसरे गुणस्थान नहीं, उनकी उदीर्णा तो छठे तक है, तो उसका काल कैसा लेना है, परंतु वो कैसी ध्रुव उदयी नहीं है, अध्रुवोदयी है, यानी कभी उसका उदय होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा, और होगा तो एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक होगा। भले वो छठे गुणस्थान तक उसका उदय हो सकता है, परंतु वो ऐसी नहीं है कि जिसका उदय कंटिन्यूस होता हो, इसलिए जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त बताया। और निद्रा प्रचला के बारे में भी ऐसा ही, यहाँ काल की बात चल रही है। पहले हमने कहाँ तक होता है वो बात देखी थी, कौन से गुणस्थान वालों को यानी उदीरक कौन है उसकी चर्चा की थी, अब यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ उसका कंटिन्यूस उदीरणा कितने समय तक चलेगी उसकी बात यहाँ चल रही है। अभी सातावेदनीय के हमने देखे थे एक समय से लेकर वैसे रेगुलर अंतर्मुहूर्त तक होगा, पर किसी जीव को सहस्रार वाले को 6 महीने हो सकते हैं, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल 6 महीना कहा। असाता के बारे में एक समय से लेकर साधिक 33 सागर दोनों ओर एक एक अंतर्मुहूर्त बढ़ा सकते हैं, जैसे साता का है वैसे हास्य रति का लेना और जैसे असाता का है वैसे शोक रति का लेना। मिथ्यात्व के बारे में भी जो अनादि अनंत वाला होगा परंतु जो सादी शांत है उसका जघन्य अंतर्मूर्त है, मिथ्या तो में रहा अंतर्मूर्त फिर सम्यक तो प्राप्त किया तो उसकी उदीर्णा रुक गई, ये अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट से अर्ध यानी कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, सम्यक मिथ्या तो के बारे में अंतर्मूर्त जघन्य भी और उत्कृष्ट भी, और सम्यक प्रकृति के बारे में ये भी अंतर्मूर्त होगा ना, क्योंकि अंतर्मूर्त तक सम्यक तो में रहा फिर मिथ्या तो में चला गया तो अंतर्मूर्त होगा। और अधिक से अधिक कैसे वो पंचेंद्रिय जाति के लिए था देखो वेदक सम्यक तो में से सम्यक मिथ्यात्व में आया तो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा रुक गई ना, एक आवली कम, क्योंकि छासर सागर पूरा उसी को होता है जो क्षपणा करने वाला है, अंतिम आवली में अभी उसकी उदीर्णा रुक गई, तो आवली कम छासर सागर। देखो ये पेज नंबर 62 पर, मैंने भी नहीं पढ़ा पर मुझे याद आया था इसलिए। हाँ देखो नीचे का पैराग्राफ है ना 62 पेज पर, उसमें उस चौथी लाइन में शुरू हुआ था, सम्यक प्रकृति का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, उत्कर्ष से आवली से कम छासर सागर। सम्यक मिथ्यात्व को तो हमने देख लिया था। उसके बाद अनंत अनुबंधी का, अब अनंत अनुबंधी ऐसे टोटल नहीं लेना, अनंत अनुबंधी क्रोध को अलग से लेना, तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक, क्योंकि क्रोध हो मान हो माया हो लोभ हो उसका काल अधिक से अधिक अंतर्मूर्त है, उदय का उदीर्णा भी अंतर्मूर्त तक ही होगी कंटिन्यूएशन में, क्रोध के बाद मान माया लोभ चेंज हो जाएगी। पहले हमने उदीरक कौन है तो पहले दूसरे गुणस्थान वर्ती लिया था, अब वहां यानी यहाँ काल की जो बात है तो एक एक कषाय को अलग अलग लेना है, ऐसे ही अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को भी कहते हैं। मरण की अपेक्षा भी लेते हैं और कषाय चेंज होने की अपेक्षा भी हो जाता है एक समय में। एक्चुअली व्याघात से तो मान माया लोभ होता है, वो तो उसका हटकर क्रोध में आ जाता है, यानी मरण की अपेक्षा से क्रोध को लेना। व्याघात यानी अन्य ऐसा होता है, क्रोध से मान में चला गया और एक समय में ब्रेक हो गया, व्याघात हो गया ना, उसका उदय रुक कर फिर वापस क्रोध में आ जाएगा, यानी मान माया और लोभ में एक समय में व्याघात की अपेक्षा एक समय वहां घटित होता है, क्रोध में एक समय व्याघात की अपेक्षा घटित नहीं होता है, मरण की अपेक्षा हो जाएगा। संज्वलन क्रोध का जो उदीरणा काल है, जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से अंतर्मूर्त, ऐसे हर एक में समझ लेना। हाँ अभी भय जुगुप्सा के लिए क्या है, उसके उदय के नियम क्या है, दोनों का उदय नहीं होगा या एक का होगा या दोनों का एट ए टाइम होगा, तो वहां एक समय कैसे घटित करता है करते हैं ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो जो उपशम श्रेणी से उतरने वाले उसका क्या 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 एक समय, देखो एक समय के लिए वेदक हुआ और फिर अनंत समय में मर हो गया, नहीं यहाँ क्या लिया, नहीं नहीं उतर के समय नहीं लेना है, देखो देखो इस तरह से लेना है, उसमें उदय के नियम क्या है, उदय नहीं था और उदय शुरू हुआ, और उदय शुरू हुआ कब हुआ, आठवें के अंतिम समय में और नौवें में चला गया, तो उदय उदीर्णा की उच्चित्ति हो गई। फिर से भय जुगुप्सा में नियम क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जुगुप्सा का उदय है भय का है ही नहीं, और अपूर्वकरण के अंतिम समय में जुगुप्सा का उदय मिट गया और भय का शुरू हुआ, या दोनों का नहीं था और दोनों का शुरू हुआ, आइदर कुछ भी ले सकते। तो उदय शुरू हुआ एक समय, कब शुरू हुआ, अंतिम समय में, और फिर अनिवृत्ति में ही चला गया।
उदय होगा तो अंतर्मूर्त के लिए मिनिमम हो जाएगा।
हाँ उदय होगा तो अंतर्मूर्त के लिए, वहां एक समय वाली बात नहीं घटित करना, इसीलिए पूछा था कैसे। अभी नपुसक वेद का उदीरणा काल जघन्य से एक समय, ये श्रेणी में उतरते समय हम ले सकते हैं, फिर मरकर देव में गया तो पुरुष वेद का शुरू हुआ और लगातार एक इंद्रिय में रहा लंबे काल तक, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होगा। स्त्री वेद के लिए वही एक समय जघन्य से, और उत्कृष्ट में स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल, ये सौ पल्ले पृथक कर। पुरुष वेद में वो एक समय नहीं घटित होगा, अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा, तो दो श्रेणी के बीच वाला अंतर ले सकते, और उत्कृष्ट में पुरुष वेद में उत्कृष्ट सौ सागर पृथक। अब आयु में लेना, नरकायु में उनकी जघन्य आयु है 10,000 वर्ष, उसमें एक आवली कम। उत्कृष्ट आयु 33 सागर, उसमें आवली कम। देव में भी ऐसा है। मनुष्यों में मनुष्यायु का उदीर्णा काल, देखो ये मनुष्यों में तो छठे गुणस्थान के ऊपर भी गुणस्थान है। छठा गुणस्थान अन्य कहीं किसी गति में नहीं है। तिरियंच में 5वें तक है परंतु छठा ही नहीं है। तो जो मनुष्य 6ठे से 7वें में जाते हैं तो उनका आयु की उदीर्णा बंद हो जाती है, और 7वें में से 6ठे में आए तो आयु की उदीर्णा की उन्होंने एक समय के लिए, और फिर मरण के पूर्व आवली में प्रवेश हो गया, तो एक समय उसके उदीर्णा बन सकती है। मनुष्यायु की उदीर्णा जगन्य से एक समय हो सकती है। और उत्कृष्ट, अभी मनुष्य की उत्कृष्ट आयु लेना, उसमें आवली कम करना, आवली कम 3 पल्ले। अब तिरियंच में अभी उनकी जघन्य आयु कितनी है क्षुद्र भव की, तो आवली कम क्षुद्र भव लेना, और उत्कृष्ट 3 पल्ले में एक आवली कम, इतना। अब गति नाम कर्म के लिए जो एक भव है, देवों के लिए और नरकी के लिए एक भव लेना लगातार, और उतने उसके जघन्य और उत्कृष्ट काल होगा गति नाम कर्म का। अभी तिरियंच गति में क्या है, लगातार तिरियंच में रह सकता है। आयु में तो एक आवली पूर्व रुकता है, परंतु गति नाम कर्म में तो कोई कंटिन्यूस चला, जो तिरियंच में लगातार रहेगा उसको तिरियंच गति नाम कर्म का उदय उदीर्णा भी चलती रहेगी। तो उनमें जघन्य में क्षुद्र भव लेना एक भव, और उत्कृष्ट में तिरियंच के लिए असंख्यात पुद्गल परावर्त अनंत काल, और मनुष्यों में पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले, जो हम लगातार मनुष्य में रहने का जो काल घटित करते हैं 47 पूर्वकोटि और 3 पल्ले। अब उसमें उदीरक कौन नहीं है, तो अयोगी में उसका उदीरक नहीं है, बाकी सब उदीरक है। अभी हम 64 पेज पर आते हैं, जाति नाम कर्म की बात है। देखो जैसे एकेंद्रिय में रहने का काल, द्विंद्रिय में रहने का काल, तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय तक तो अपना अपना जो उत्कृष्ट जघन्य और उत्कृष्ट काल वहां लेना। जघन्य में तो क्षुद्र भव लेंगे, एकेंद्रिय के लिए उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परावर्तन, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय के लिए संख्यात हजार वर्ष। पंचेंद्रिय में क्या होता है कि उत्कृष्ट से पूर्वकोटि पृथक्त्व से अधिक 1,000 सागर है। हाँ, दोनों लेना। अब औदारिक, उसका उदीरक और अनुदीरक की जब बात की थी, तो उदीरक अनुदीरक में हमको सोचना था कि 13वें गुणस्थान के अंत समय तक उदीरक है, 14वें वाला अनुदीरक हो जाता है, परंतु यहाँ ये बात नहीं है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कितने लगातार कितने काल तक कोई पंचेंद्रिय जाति का उदय होगा, तो कहते संगी असंगी के भव ले लेना, वहां पर्याप्त हो अपर्याप्त हो। हाँ हाँ, तिरियंच मनुष्य दोनों के, तिरियंच मनुष्य क्या उसमें तो सभी देव नारकी भी आएंगे ना पंचेंद्रिय जाति में, औदारिक शरीर में तिरियंच मनुष्य लेना। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय, और वो समय कब होगा, हाँ देन उसकी विक्रिया की और एक समय फिर वापस लौटा, और एक समय के लिए औदारिक शरीर की शरीर नाम कर्म की उदीर्णा की, यानी उदय हुआ उदीर्ण हुआ, और फिर मरण हुआ और विग्रह गति में गया। वो कहाँ तिरियंच में गया मनुष्य, उससे कुछ मतलब नहीं है। और उत्कृष्ट उदीर्णा काल कितना है, तो लगातार यानी बिना विग्रह के उसको जाना चाहिए, तो अंगुल का असंख्यात भाग। वैकिरिक शरीर नाम कर्म का वो भी एक समय, एक समय इसलिए कि उसने विक्रिया की, मनुष्य और तिरियंचों ने विक्रिया की और दूसरे समय में मर गया, और उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल है साधिक 33 सागर। साधिक 33 इसलिए कि 33 सागर वाले देव में तो वैकिरिक शरीर नाम कर्म का उदय है ही है, यहाँ जो विक्रिया की थी अंतर्मूर्त तक वहां पर भी वैकिरिक शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। उदय उदीर्ण की बात है यहाँ पर अपनी,
यहाँ पे विक्रिया की तो तुरंत उदीर्ण चालू हो जाएगी।
हाँ, उदय के साथ उदीरना चालू ही हो जाती तुरंत। यहाँ बंधे की बात नहीं है ना, उदीरना कहाँ नहीं होती तो बंधावली में नहीं होती, उस पर्टिकुलर बंधे हुए की बात। और यहाँ तो सत्ता की बात चल रही है, सत्ता में ये उदीरना वगैरह प्रोसेस चल ही रहता है, चलता ही रहता है। अने उदय के साथ साथ उदीरना भी चलती रहती है। अने इसके लिए कुछ जीव पुरुषार्थ करता है और उदीरना होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो श्रेणी वाले उदीरना में वो बात लगाते हैं, परंतु बाकी अन्यत्र ये जो कर्मों के प्रोसेसेस है उदीरना वगैरह, वो तो सहज उसका जो ऐसा ही स्वभाव है, वो जीव में उसका क्या पुरुषार्थ चलेगा। क्योंकि वो परिभाषा ऐसे बनाई है ना, अभी जो कुछ दसकरण संबंधी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, तो जीव के पुरुषार्थ से या ऐसा ऐसा ऐसा, हर बार उसको जीव के पुरुषार्थ से ये नहीं लगाना है। वैसे तो पुरुषार्थ किस में लगेगा, तो अपने में लगेगा ना, अपनी पर्याय के बारे में कह सकते हैं। कर्म के लिए जीव का पुरुषार्थ से जीव के पुरुषार्थ से ये बात कहना बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ देखो, अभी आहारक शरीर के, उसका उदीर्ण काल जघन्य और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, क्योंकि आहारक मिश्र जो काल है वहां मरण नहीं होता, इस अपेक्षा से मिनिमम अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा। और आहार का योग होने पर मर जाएगा तो जो छोटा अंतर्मूर्त होगा, और पूरे आहारक शरीर में रहने का अंतर्मूर्त लेगा तो बड़ा अंतर्मूर्त होगा। जैसे अभी हमने शरीरों की बात की थी, वैसे अंगोपांगों की लेना है, ये औदारिक अंगोपांग अभी, परंतु डिफरेंस क्या है, औदारिक शरीर की उदीरणा लगातार, जैसे अंगुल का असंख्यात अभाग लिया था, परंतु अंगोपांग में क्या लेना है, त्रस में रहना, रहने का काल होना। हाँ, तो उसमें तीन पल्याधिक पूर्व कोटि पृथक्त्व लेना। अब हमको संस्थान नाम कर्म की बात देखनी है। देखो, समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म का उदीर्ण काल, यानी लगातार उसी का उदय होना चाहिए। देखो इसमें थोड़ा हम ये बात देखते हैं, सम्यक दृष्टि होने पर बंध किसका होगा, समचतुरस्र संस्थान का। क्यों बंध की बात करें, मैं उदय की नहीं कर रही, यानी हुंडक संस्थान की बंध विच्छित्ति पहले में होती है और दूसरे में बीच वाले नग्रोत परिमंडल स्वातिक उपजक वामन, यानी पांच संस्थान तो गए। जो सम्यक तो प्राप्त करने के बाद बंध उसको समचतुरस्र का ही होगा, तो सम्यक तो के साथ उत्पन्न होगा तो समचतुरस्र ही उत्पन्न होगा, ये बात है। अब नरक गति में वो तो हुंडक संस्थान के साथ उत्पन्न होता, उसकी बात छोड़ दो, समझ में। तो लगातार अगर वो सम्यक तो मेरे, एक बात, और फिर वो देव में उत्पन्न हो गए तो समचतुरस्र संस्थान ही रहेगा, क्योंकि देवों के वही होता है, ख्याल में है ना, जो आप वो दो बार वगैरह, हाँ वो 61-63 बात आपको याद थी, वो इसके लिए। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं इसको, पेज नंबर 64 लास्ट लाइन, समचतुर संस्थान नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि अभी ये किस कैसे घटित करना, कोई समचतुर संस्थान में था, कोई अन्य संस्थान में था और उसने विक्रिया की, तो विक्रिया में समचतुर संस्थान वाले शरीर की विक्रिया की, उत्तर शरीर की विक्रिया करके विवक्षित, नहीं ऐसा नहीं लिया इसमें। देखो समचतुर संस्थान का ही उदीरक था, यानी समचतुर संस्थान वाला मनुष्य था मान लेते, उसने उत्तर शरीर की विक्रिया की और फिर अंतर्मूर्त रहा, तो विक्रिया जो की तो उसका संस्थान जुदा था, फिर वापस मूल शरीर में लौटा, तो समचतुर संस्थान का उदय शुरू हुआ, उदीरना चालू हो गई और एक समय में मरा, तो बीच में अन्य संस्थान का उदय उदीरना थी, मूल शरीर में आते ही ओरिजिनल फिर उसकी उदीरना चालू हो गई और द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर फिर अन्य संस्थान को प्राप्त हुआ, उस जीव के एक समय मात्र काल पाया जाता है। हाँ, परंतु मेरा ये प्रश्न है, अन्य आकार लिया तो अन्य आकार लिया नहीं, उसके बिना मोड़ के जाना पड़ेगा। अगर मोड़ते जाता तो यही संस्थान चालू रहता, उसको अनुपूर्वी का उदय होता तो यही संस्थान चलता उसका, अन्य संस्थान को चला गया नहीं, वो अन्य उसने इमीडिएट विक्रिया में नहीं, अगर मोड़ में गया तो। देखो एक समय में मरा, देखो हम ऐसा कहते कोई समचतुर संस्थान वाला मनुष्य है, उसने विक्रिया की अन्य संस्थान के साथ, ओरिजिनल शरीर में आया तो समचतुरस्र का उदय उदीरना चालू हो गया, एक समय में मरा। अगर एक समय में मरकर मोड़ सहित अगर जाएगा देव में, मान ले देव में या कहीं पर भी जाएगा, अन्य भी हुंडक संस्थान में भी जाने वाला क्यों ना हो, पर पहला वाला आकार उसका चालू रहेगा, हाँ तो उसको बिना मोड़ से अन्य संस्थान में जाना है, तभी ये पॉसिबल है।
अनुपूर्वी का उदय है, वहाँ पे संस्थान का उदय हम लोग को पूर्व भोग का लेना पड़ेगा।
संस्थान का उदय ही नहीं होता एक्चुअली, उसका आकार वो रहता है। हाँ एक्चुअली मोड़ से जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ संस्थान नाम कर्म का उदय ही नहीं है। बराबर है, ठीक है। यानी वो मैं जो घटित कर रही थी वो नहीं रूल होता है। बराबर, आकार पहला पर संस्थान का उदय नहीं है, बस इतना ही। हाँ, उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 163 सागरोपम प्रमाण है। हाँ, यानी 66 सागर, 66 सागर और 31 सागर हुंडक संस्थान को उसकी उदीर्णा तभी होगी, उसका उदय होगा ना, वहाँ विग्रहण में संस्थान नाम कर्म का उदय ही नहीं है।
संस्थान नाम कर्म का उदय, अरे उदीर्णा मिश्र काल में पहले समय से हो जाएगी।
हाँ पहले से, जिस समय उदय होए उसी समय से उदीर्णा होती है, क्योंकि सत्ता में पड़े हैं ना सारे निषेक, उसका उदय शुरू हुआ था, उदय के साथ साथ उदीर्णा भी हो रही है। क्योंकि उसका उदय नहीं होगा तो उदीर्णा भी नहीं होगी इस भव के बीच में। जैसे औदारिक शरीर में कैसा देखा था हमने, जैसे शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है विग्रह गति में, ऐसे यहाँ पर भी लेना। वहाँ जो हमने संस्थानांतर की बात की थी, वहाँ तो बिना मोड़ की नहीं भी कंडीशन लगाते तो भी चल जाता है। अब चौथी लाइन, कुंडक संस्थान को छोड़कर शेष चार संस्थानों का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व मात्र, एक समय उन्होंने विक्रिया की अपेक्षा बताया था, और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व मात्र है, क्योंकि कर्मभूमिज पंचेंद्रिय तीर्यंच और मनुष्यों को छोड़कर अन्यत्र शेष संस्थानों की संभावना नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि हुंडक संस्थान तो मनुष्य तीर्यंच कर्मभूमि वालों को भी पाया जाता है, नारकी में भी पाया जाता है, एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक भी पाया जाता है, समचतुर संस्थान देवों में होता है और ये मनुष्य तीर्यंच और भोगभूमि वालों में होता है, बीच वाले जो चार है वो कर्म भूबीज पंचेंद्रिय तीर्यंच और मनुष्यों को छोड़कर अन्यत्र नहीं होते। हाँ इसलिए उनके पूर्व कोटि पृथक को लेना है, वो तीन पल्ले वाली बात नहीं लेना। अभी हुंडक संस्थान की बात है, वो नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात विभाग। देखो ये बिना मोड़ वाला लिया ना, यहाँ संस्थान में रहे क्योंकि विग्रह गति के बिना परिभ्रमण करने वाले एकेंद्रियों और विकलेंद्रियों में अन्य संस्थान की संभावना नहीं है। यानी उनके हुंडक संस्थान ही पाया जाता है। और अगर बीच में विग्रह गति मोड़ वाली ले लेते हैं तो संस्थान का उदय रुक जाएगा, भले वो एकेंद्रीय से एकेंद्रीय में भी जावे और मोड़ से जावे तो वो एक या दो या तीन समय के लिए उसका उदीर्णा रुक जाएगी। शंकाकार पूछ लेते, देखो अनंत काल की प्ररूपणा क्यों नहीं की? क्योंकि विग्रह गति में रहने वाले जीवों के संस्थान का उदय संभव नहीं है। ये समझ में आई ना बात? इसलिए ऊपर भी हमने बिना मोड़ वाली बात वहां डाली थी। फिर शंका पूछी थी हमने कल, पढ़ा था कि विग्रह गति में संस्थान नहीं है तो जीव का भी अभाव हो जाएगा। तो कहते वहां अनुपूर्वी के द्वारा रचे गए संस्थान में अवस्थित जीव के अभाव का विरोध है, यानी अनुपूर्वी के द्वारा वो संस्थान की रहने आकार की रचना होती है, बस इतना है। अब यहां से अपना विषय शुरू होता है आज का। देखिए वज्रषभ नाराज शरीर सहनन नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उत्तर शरीर से मूल शरीर को प्राप्त होकर विवक्षित सहनन से एक समय परिणत होकर द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल पाया जाता है। हमने देखा था विग्रह गति में भी सहनन का उदय नहीं, उसका उदीर्णा काल उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपन प्रमाण है। ये समझ में आती है बात? हाँ, भूभूमि में तो वही है और अन्यत्र भी हो सकता है कि हर बार उसके उत्कृष्ट ही सहनन मिला, तीर्यंच हो या मनुष्य हो। हाँ,
पूर्व कोटि
47 या 95 जो हम करते थे,
नहीं 95 प्लस ले सकते मनुष्य और तीर्यंच का मिलके।
हाँ, वो भी मिल ले सकते, बराबर है, मनुष्य और तीर्यंच उनके दोनों मिलकर ले सकते हैं ना।
जाने वाला जीव और दोनों का कंबाइन करके।
अभी ऐसा हम एग्जैक्ट उसको नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मनुष्य और तीर्यंचों को मिलकर एग्जैक्ट उतनी संख्या बढ़ेगी ये नहीं कह सकते, ज्यादा भी हो सकते। जैसे हमने सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तों में लगातार अंतर्मूर्त, अपर्याप्तों में लगातार अंतर्मूर्त, दोनों को मिलकर दो अंतर्मूर्त नहीं होता, असंख्यात लोक प्रमाण काल होता है। तो हम अपनी ओर से नहीं कुछ बनाएंगे नियम, यथा योग्य, पर पूर्व कोटि पृथक होगा। और लास्ट में वो वज्रषभ नारा सहनन है ना, इसलिए लास्ट में तीन पल्ले रखना है। शेष पांचों ही सहननों का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। इसमें तीन पल्ले वाले नहीं लिए भूभूमि को छोड़कर, क्योंकि उनमें सर्व जीव जो स्त्री हो या पुरुष हो वज्रषभ नारा सहनन ही होता है वहां पर जीवों के। अब 66 पेज पर आया, भूभूमि में भले वो जघन्य हो मध्यम हो या उत्कृष्ट हो, उत्तम भूभूमि हो, वज्रषभ नारा सहनन वाले ही होते वहां पर। संस्थान तो समय चतुरस्र होता ही है, वो तो देव में भी होता है। हाँ, समय चतुरस्र ही होगा उनके। हाँ, वज्रषभ नारा सहनन। हाँ, समय चतुर्थ में प्रोपोर्शनेट जो कुछ बड़ी होगी उनकी। हाँ, अब यहाँ 66 पेज पर आएंगे। नरक गति प्राज्ञानपूर्वी नाम कर्म का उदीर्णा काल। देखो नरक में जाने वाले कौन है? तो पंचेंद्रिय, भले असंगी भी जा सकते पहले नरक में, परंतु दो मोड़ से ज्यादा मोड़ लेते ही नहीं है। तो कहते हैं नरक गति प्राज्ञान पूर्वी का उदीर्ण काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय मात्र है। इसी प्रकार मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी और देव गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्मों के उदीर्ण काल का कथन करना चाहिए। पर तीर्यंचों में वो सूक्ष्म जीव भी होते हैं और उनके लिए तो तीन मोड़ भी लेते हैं। तीर्यंच गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म का उदीर्ण काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से तीन समय प्रमाण है। उसका रीजनिंग हमें ख्याल में आना चाहिए, बस इतनी। उपघात नाम कर्म का उदीर्णा काल। प्रेरणा बिन उपघात नाम कर्म का उदय कब होता है? पहले समय से, भव के पहले समय से। हमने देखा ना उपघात नाम कर्म का उदय वहां से शुरू हो जाता है, विग्रह गति में नहीं होता। इसलिए वहाँ हाँ शरीर मिश्र शरीर काल जो है यानी पहला समय भव का, शरीर धारण करने का पहला समय। तो देखो यहाँ हम पढ़ रहे थे ना, देखो कहाँ गए ऊपर, उपघात नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त, हाँ, और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। अंगुल का असंख्यात भाग यानी वो तो आहार का आहारक रहा, रुजुगति से जाने वाला जीव लिया, क्योंकि विग्रह गति में उसका उदीर्णा, उसकी उदीर्णा नहीं होती, अदरवाइज तो उदीर्णा चलती रहती। और जगन्य से अंतर्मूर्त यानी वो तो कोई क्षुद्र भव का अंतर्मूर्त लिया उसको, क्योंकि उपघात का तो उदय तो सबके होता है। परघात नाम कर्म का उदीर्णा काल। अभी परघात का उदय कब होता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण, हाँ हाँ पूर्ण होते, जिसको शरीर पर्याप्ति काल कहने में आता है। तो अपर्याप्तों के तो होगा नहीं वो, पहले समय मिश्र शरीर काल यानी शरीर धारण करने का पहला समय, जहाँ उदारिक शरीर नाम कर्म का उदय शुरू हुआ। औदारिक शरीर, अंगोपांग, प्रत्येक असाधारण शरीर हमने देखे थे ना, उसमें कोई संस्थान है वहां उसका उदय होता है और उपघात का उदय चालू हो जाता है। और मनुष्य तीर्यंच द्विंद्रियादि हो गए तो सहनन, ये छह हो जाते हैं उसमें। फिर से देखो विग्रह गति में हमने कितने देखे थे, किसका उदय देखा था, उसमें से अनुपूर्वी रुक जाती है। कल परसों आपने लिखा था, दो दिन पहले ये बात बहुत विस्तार से हुई थी। हमने नाम कर्म के पांच अलग अलग काल देखे थे, एक विग्रह, नहीं नहीं उसके पहले दो चार दिन पहले, देखो देखो विग्रह गति का काल यानी जिसको कारमान काल कहते, मिश्र शरीर काल यानी पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पूर्व तक, नाम कर्म के पांच काल है अलग अलग। शरीर पर्याप्ति काल यानी पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर जब तक उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होते ही और बाहर यानी स्वर नाम कर्म का उदय नहीं वहां तक, और वहां स्वर नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। तो भाषा पर्याप्ति काल थ्रू आउट लाइफ रहता है, यानी द्विंद्रिय से लेकर बाकी सबको पांच काल है और एक इंद्रियों के लिए चार काल है। तो उसमें उच्छ्वास है ना, वो इंद्रिय पर्याप्ति से इसी के कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां कोई नाम कर्म की नई प्रकृतियों का उदय तो नहीं चालू हो जाता। इसलिए मिश्र विग्रह गति काल, मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल, नाम कर्म के ये पांच स्थान। तो हमने विग्रह गति की जो विग्रह गति में जो हमने देखी थी प्रकृतियां, उसमें तो ध्रुवोदयी थी, बारह तो ध्रुवोदयी थी। आप बताएंगे बारह? अश्विन भी आप माइक में बताना, ध्रुवोदय बताना आपको। तेजस कारमार
वर्ण गंध
वर्णादि चार,
अगुरु लघु
स्थिर स्थिर शुभ अशुभ,
अगुरु लघु और
अगुरु लघु और उप सॉरी अगुरु लघु और
उपकार
नहीं नहीं अगुरु लघु निर्माण था। उपघात तो वहां जाने पर शुरू हो रहा है ना,
शरीर पर्याप्ति के पश्चात,
शरीर पर्याप्ति पेशा नहीं, मिश्र शरीर काल में उपघात शुरू होता है और शरीर पर्याप्ति के बाद परघात, विहाय गति और आतप उद्योत होता है। तो अनुपूर्वी को हटाना, स्थावर है तो उसमें तो क्या लेना, एक औदारिक शरीर है, संस्थान है, उपघात है और प्रत्येक साधारण है, ये स्थावर के चार मिलाए तो 24 हो जाएंगे। देवों में हाँ, देवों में अंगोपांग मिलाओ तो 25 हो जाएगी और द्विंद्रियादि में सहनन मिलाओ तो 26 हो जाएगी। हाँ देखो अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। फिर से परघात के बाद पूछ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे 66 पेज पर पांचवी लाइन लास्ट में, परघात नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय है, क्योंकि उत्तर शरीर की विक्रिया कर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में, यानी अभी विक्रिया संबंधी भी पर्याप्ति होगी उसके, वैक्रिक यानी शरीर बनाए ना उसने विक्रिया से, तो वहां पर भी उस संबंधी उसकी पर्याप्तियां होगी। हाँ, तो वहां पर्याप्त, हाँ सभी होगी, पर्याप्ति तो छह होती है ना। अब जिसकी जो जैसी होगी वो, तो कहते कि उत्तर शरीर की विक्रिया कर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है, यानी वहां पर भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही परघात नाम कर्म का उदय शुरू हुआ, उदीर्णा भी हुई, और फिर मर ही गया तो वो तो शरीर भी नहीं रहा और ये ओरिजिनल भी नहीं रहा, तो उसका परघात का उदय एक समय के लिए। देखो कितने समय समय के जो उदय उदीर्णा के नियम पढ़ते हैं ना, हम तो खाली वो शरीर की विक्रिया की और मर गए, हम इतना ही देख रहे थे, उसमें उस संबंधी जो नाम कर्म के उदय भी, उसको भी सोचना है।
तो मैंने कभी नहीं सोचा था ये संस्थान का उदय इतना, छह संस्थान का उदय अलग हो सकता है।
हाँ, विक्रिया में छह अलग अलग संस्थान हो सकते हो, हमने भी नहीं सोचा था, यानी हाँ विक्रिया के संस्थान अलग हो गए, विक्रिया करके कैसा शरीर बनाया उसने, उसके संस्थान भी जुदे जुदे हो गए, आकार धारण करता है। हाँ जैसे आता है ना, वो तो मुनि ने वामन का रूप,
हाँ।
वामन संस्थान विक्रिया से दूसरा बना है ना शरीर। उसका उदीर्णा काल उत्कर्ष से, परघात की बात चल रही है, कुछ कम 33 सागरों परम प्रमाण है। देखो कैसे 33, एक बहु लेना है, और विग्रह गति में तो उदय होता ही नहीं, ना ही वो तो मिश्र शरीर काल में उदय होता है, तो एक ही भव में लेना है, और एक भव में से वो जो शुरुआत का शरीर मिश्र काल और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उदय चालू, उदय और उदीर्णा चालू, यानी वो पहले वाला अंतर्मूर्त माइनस कर देना कुछ कम। हाँ उसी को लिया, नारकी हो या देव, पर्याप्ति का काल वहां से आने वाले को कम और ज्यादा था,
क्योंकि जो नरक में जाता है उसका पर्याप्ति का काल बड़ा होता है और देव में उत्पन्न
नहीं। हमने जो देखा था नरक में से आने वाले और देव में से आने वाले की बात की थी, कि नारकी और देव की थी, ज्यादा टाइम लगता है ना, तो वहाँ उसका ले कुछ कम जो है, ऐसा नहीं, नरक में से जो मनुष्य में उसकी बात, तिर्यंच में आने वाले, वहाँ नरक से तिर्यंच जाएगा और देव मनुष्य में आएगा, उसकी बात थी। सर्वार्थ सिद्धि में से ये मनुष्य में आने वाले को उसको तो ज्यादा काल लगता है, अभी उल्टा लेना पड़ेगा, वो पहली वाली पुस्तक में था नहीं,
आराम से होता है,
उल्टा है, आराम से था। अभी किसमें देखेंगे आप, कौन सी देखेंगे, ये पहले धवला की पूर्व पुस्तकों में आया था, हाँ 14वीं पुस्तक में था कि 13वीं में था, जरा देख के आना ना, कर जरा लिख के रखो क्या देखना है, नहीं तो दिन भर तो दिन कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता। पर्याप्ति का काल जो बड़ा छोटा उसकी बात की थी, नहीं वेदना में थे कि वर्गना में था, वेदना में होगा शायद, 12वीं 13वीं में कुछ होगा, या पीछे अपने पुस्तक में लिखा हुआ होगा, पता नहीं, याद नहीं है। चलो अभी तो आगे बढ़ते, अल्प बहुतों में कहीं आएगा तो देखो, देखेंगे। देखो हमने देखा था, जैसे परघात नाम कर्म के उदीर्णा काल की प्ररूपना की गई है, वैसे ही उच्छ्वास क्योंकि उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसका उदय चालू हो जाता है उसी समय। प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, विहाय गति वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही शुरू हो जाता है उसका उदय। सुस्वर और दुस्वर भाषा पर्याप्ति के काल में होता है। नाम कर्मों के उदीर्णा काल की प्ररूपना करना चाहिए। वो जो कम कर रहे हैं वो छोटा है कि बड़ा है उससे मतलब नहीं, कुछ कम बस इतना हमको देखना है। आतप नाम कर्म का उदीर्णा काल, जघन्य से अंतर्मूर्त। देखो आतप का भी उदीर्णा कब शुरू होती है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। और उसकी यानी पर्याप्त जीव है तो जघन्य से अंतर्मूर्त तक तो रहेगा, क्योंकि वो अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त होंगे कि तो इसका उदय नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्षुद्र भव यहाँ नहीं ले सकते। और उत्कर्ष से कुछ कम 22,000 वर्ष प्रमाण, कुछ कम में वो तो मिश्र शरीर काल को कम कर देना उसमें से 22,000 वर्ष में से। पृथ्वी का एक अंको ही होता है आतप, क्योंकि शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त जीव के आतप नाम कर्म का उदय संभव नहीं है। यानी जब तक वो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसका उदय शुरू नहीं होता। हाँ, पर्याप्तों की जघन्य आयु वो अंतर्भूत है। और उसमें से भी वो
हाँ
ले सकते हैं ना, उसकी कोई बात नहीं। पर उसका उदय कब शुरू हुआ? वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। उद्योत नाम कर्म का उदीर्णा काल, जघन्य से अंतर्मूर्त, वही सही, अंतर्मूर्त के लिए वही कंडीशन। और उत्कर्ष से कुछ कम 3 पल्ले प्रमाण है, कुछ कम वही शरीर पर्याप्ति के लिए जितना काल लगा वो 3 पल्ले वाले की उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है। उद्योत तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको होता है, अग्नि वायु को छोड़कर होता है और अपर्याप्तों के नहीं होता है। और एक इंद्रिय में हमने देखा ना, जल को पृथ्वी को है, जल को है और अग्नि वायु को नहीं है, बस इतना ही। वनस्पति को भी है, है ना, उद्योग पर्याप्तों के होता है। त्रस नाम कर्म का उदीर्णा का, अभी त्रसों में लगातार रहने की बात है। जघन्य से अंतर्मूर्त, त्रस नाम कर्म का उदय कब होता है? विग्रह गति में होता है कि नहीं होता? होता है। देखो देखो, विग्रह गति में हमने 12 तो अपना ध्रुव दई गएंगी नहीं, उसके बाद एक गति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म है, फिर त्रस या बादर है, स्थावर या सूक्ष्म, त्रस या स्थावर है, बादर या सूक्ष्म है, पर्याप्त अपर्याप्त है। फिर उसमें हमने लिया था कि जो आधे अनादेय, सुभग दुर्भग, यश कीर्ति अयश कीर्ति, वो भी है उसमें, वो ऑप्शनल थे इसलिए अलग से लिए थे। हाँ मिल गया। देखो पहले 12 थी, फिर 9 में क्या लिया? एक गति, जाति, फिर त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त। अभी वो जो सिर सिर वगैरह तो जो 2 जोड़ी गई थी, अब बाद में जो रही गई अभी उसमें 3 लेना, यहाँ पर सुभग या दुर्भग, आधे या अनादे, यश कीर्ति या अयश कीर्ति। अभी और एक कौन सी रहेगी? अनुपूरी, अनुपूरी, ये 9 और वो 12, 21 थी, है ना। तो यहाँ त्रस नाम कर्म का उदय तो विग्रह गति में भी है। अभी है ना, अभी हमने 21 गिना है ना।
अच्छा,
अभी हम बात त्रस प्रकृति की कर रहे हैं, अनुपूरी की नहीं। अभी देखो, त्रस नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त, हाँ, और उत्कर्ष से साधिक 2,000 सागरोपम है। क्योंकि त्रस लिया, पर्याप्त है तो भी त्रस नाम कर्म है, त्रस अपर्याप्त है तो भी त्रस नाम कर्म का उदय, इसलिए साधिक में ले लिया उसको, साधिक 2,000 सागर। यानी पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2,000 सागर होते हैं, साधिक में पूर्व कोटि पृथक को ले सकते हैं। स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण नाम कर्मों का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त प्रमाण है। वो अंतर्मूर्त में वो सब जिसका जो अंतर्मूर्त है उसको ले लेना अलग अलग। वो होता ना सावर का बादर का सूक्ष्म प्रत्येक और साधारण का विग्रह गति में नहीं है। उत्कृष्ट उदीर्णा काल स्थावर नाम कर्म का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, ये तो समझ में आवे। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, बादर नाम कर्म का अंगुल के असंख्यात विभाग, क्योंकि हमने देखा बादर एक इंद्रिय में रहने का काल। हाँ, अरे फिर से आप और बादर होता है ना, बादर सूक्ष्म दोनों होते हैं। ये अंगुल का असंख्यात भाग वो आहारक की अपेक्षा नहीं कहा है। अंगुल का असंख्यात भाग ये उसकी स्थिति है, काय स्थिति। बादर जीवों की काय स्थिति है। बादर एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है तो अंगुल का असंख्यात भाग।
अच्छा, ये
काय
स्थिति।
हाँ, सूक्ष्म नाम कर्म का असंख्यात लोक तो हमने देखा था ना, सूक्ष्म कहने से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। पर्याप्त नाम कर्म का 2000 सागरोपम, देखो वैसे जो त्रस का भी दो, त्रस पर्याप्त का भी 2000 सागर है और यहाँ पर भी 2000 सागर ही लिया। ये भले एक इंद्रियों में भी पर्याप्त से पर्याप्त रहेंगे तो उसमें ऐड होगा तो भी वो 2000 सागर ही बता दिया उन्होंने पर्याप्तों का। अपर्याप्त नाम कर्म का अंतर्मूर्त, क्योंकि हमने देखे अपर्याप्तों के लगातार भव हो जावे 66,336 तो भी अंतर्मूर्त ही होते, बाद में बीच में पर्याप्त का भव होगा ही होगा, ये उसका अर्थ होता है। तथा प्रत्येक व साधारण नाम कर्मों का अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यहाँ आहारक की बात लेना रुजुगति से, क्योंकि उसका बीच में प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर जो कुछ है उसका ब्रेक नहीं हुआ, इन्हें लगातार रुजुगति से जाता रहा। हाँ, यश कीर्ति सुभग और आदेय नाम कर्मों का उदीर्णा काल, उत्तर विक्रिया से मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव के जघन्य से एक समय मात्र है और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण है। सौ सागर पृथक्त्व लिया। क्यों नहीं, नहीं मेरा प्रश्न नहीं समझ में आया।
तो वो यश कीर्ति का ही रहता है कंटिन्यूस,
यश हो सकता है
अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त
नहीं ना, अंतर्मूर्त का नियम नहीं है उसके लिए। यश कीर्ति के लिए अंतर्मूर्त का और सुभग आदे उस भव में वही रहेगा। देखो देखो फिर से नहीं, वो पुरुष वेद का तो है ही है, परंतु इसमें सागरोपम यश कीर्ति का जो कंटिन्यूस उदय लिया है तो एक इंद्रियों के भी हो सकता है ना। किसको ऐसा नहीं, उसका उदय उदीर्णा यानी उसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक इंद्रियों में भी यश कीर्ति का उदय है कि नहीं, हो सकता है। यानी उसमें वो यश कीर्ति वाले को
यश कीर्ति का उदय है, जिसको यश कीर्ति का उदय है
वो थ्रू आउट द लाइफ एक यश कीर्ति का ही रहेगा, ऐसे नहीं है ना। नहीं
हो सकता
है ना, पुरुषवेदी की बात नहीं है ना। नहीं, स्त्री वेद से पुरुष में गया ऐसा भी हो सकता है ना, यानी पुरुष वेद असंख्यात लोक वो सूक्ष्म एक इंद्रियों की अपेक्षा।
हाँ।
क्योंकि सूक्ष्मों में यश कीर्ति का उदय ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म नाम कर्म के साथ यश कीर्ति बनती ही नहीं है। यानी यश कीर्ति किसके साथ बनती है? देवों के साथ बनती है, किसी एक इंद्रिय को ऑप्शनल है, मनुष्य के साथ भी बन सकती है, उसमें भी ऑप्शनल है। हाँ, नरक गति के साथ वो यश कीर्ति नहीं बनती, वो अयश कीर्ति बनती है। हाँ, देखो मनुष्य तीन इंचों में दोनों ही है, उसका यश अयश हो जाता है, यश से अयश, यश से यश हो सकता है।
हाँ, वो पलट सकता है।
हाँ, नेसेसरी नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर गुणस्थानों की अपेक्षा हमने देखा था चौथे के ऊपर गया तो उसका यश का ही उदय रहेगा।
अरे नहीं, राजा का हमेशा यश कीर्ति का ही उदय रहता है, वहाँ पे भी यश का उदय हो जाएगा ना,
हो जाता है ना, उसमें राजा है। हाँ। वो नहीं कहना चाहते, हो सकते है कि बात चल रही। देखो हम थोड़ा आगे का पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो यश कीर्ति सुभग और आदेय नाम कर्मों का उदीर्ण काल उत्तर विक्रिया से मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव के जगन्य से एक समय मात्र है।
यश कीर्ति का उदय होगा, अरे यश कीर्ति का उदय होगा।
हाँ, एक समय
और
के लिए
पा, 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 मूल शरीर में यश कीर्ति का उदय था, ऐसे बता रहे।
हाँ। क्योंकि देखो वहां पर भी उसके तो विक्रिया की है ना, उसने तो वैक्रियक का यश कीर्ति का भी हो सकता है। वैक्रियक का उदय है तो उसके साथ वो यश कीर्ति का उदय होगा। और देखो आगे पढ़ेंगे, अयश कीर्ति दुर्भग और अनादेय नाम कर्मों का उदीर्ण काल जघन्य से एक समय मात्र है। ये वापिस मूल शरीर में लौटने की अपेक्षा होगी शायद, क्योंकि विक्रिया में उसने यश कीर्ति सुभग आदेय किया। उत्कर्ष से हम पढ़ेंगे, उत्कर्ष से वो अयश कीर्ति का असंख्यात लोक सूक्ष्म एक इंद्रियों में लगातार सूक्ष्म एक इंद्रियों में रहा तथा दुर्भग और अनादेय का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। हाँ, तो एक इंद्रिय में इसी का उदय होता है। देखो मादर एक इंद्रियों में यश कीर्ति का उदय हो सकता, सूक्ष्म में तो अयश का ही होता है, नियम है। बादर का जब बंध होता है ना, बादर नाम कर्म का एक इंद्रिय बादर का बंध होता है, तो यश और अयश ऐसे दो ऑप्शन है, वैसे यहाँ नहीं है। अब दुर्भग और अनादेय के लिए क्या, जो एक इंद्रिय पर्याय बांधने वाले जो जीव है उसके साथ दुर्भग और अनादेय ही बनता है, नहीं समझे? उसमें डिफरेंस कहाँ है? जो बादर एक इंद्रिय का बंद कर रहे, जो जरा याद करो, बादर एक इंद्रिय का 25 का बंद था, सूक्ष्म अपर्याप्तों का 23 का बंध स्थान था नाम कर्म का। मैं बंध स्थान इसलिए याद करा रही हूँ कि उसके वैसा ही उसका उदय भी रहेगा टोटल। अब जो 25 का जो स्थान था नाम कर्मों का, तो वहां बादर के साथ कौन कौन सा ऑप्शन था, वो स्थिरादि में स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ और यश या अयश। बाकी दुर्भग अनादेय तो ही थे, और सुस्वर तो था, स्वर तो था ही नहीं, तो वैसे उनके उदय में भी ऑप्शन होगा, स्थिर का उदय है या वैसे स्थिर अस्थिर का तो ध्रुवोदय है, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ तो ध्रुवोदय है। अब वो यश या अयश में ऑप्शनल उदय होगा उसका, ये कहना चाहते हैं।
सागरों को सागरों पर पृथक तो लिया यश कीर्ति सुभग और आदि के लिए, वो क्या मनुष्य और देव के भोग की अपेक्षा लिए?
हाँ, देव मनुष्यों में हो गए, तिर्यंश को भी ले सकते हैं उसमें, अभी भोगभूमि में भी होगा। अभी सबका मिलकर सागरोपम शतपृथक्त्व, यानी सागरोपम शतपृथक्त्व, ये जो काल है वो अनेक अलग अलग अपेक्षा से भी हो सकता है, पुरुष वेद के लिए भी वही बताया था, अन्य अन्य चीज के लिए हो सकता है, तो इन प्रकृतियों के लगातार उदय के लिए भी यही काल यहाँ बताया है, यश कीर्ति के कंटिन्यूअस उदीर्ण होवे। तो शंकाकार पूछते हैं, इनका जघन्य उदीर्ण काल एक समय मात्र कैसे है? देखो यहाँ अलग अपेक्षा बताइए, अयश कीर्ति की उदीर्णा करने वाला जीव संयत हो गया, यानी वो पहले से संयत हुआ या चौथे से संयत हुआ, जो कुछ है, क्योंकि चौथे तक अयशी का उदय हो सकता है, उस समय उसके यश कीर्ति का उदय हुआ, हाँ सातवें में गया, फिर वह अंतर्मूर्त में सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, वहां अयश कीर्ति की उदीर्णा के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये सासाद, मेरा भी प्रश्न अश्विन भाई आपसे है, आप जरा माइक में बोलना, सासाधन में ही क्यों ले गए उसको?
सासाधन में एक समय में वरण हो सकता है इसीलिए,
हाँ, और मिथ्यात्व में जाते तो
अंतर्मूर्त के पश्चात,
हाँ, अंतर्मूर्त के पश्चात ही, सम्यक तो में से गिर कर अगर मिथ्यात्व में जावे अंतर्मूर्त तक मरण नहीं होगा, पर सासाधन में एक समय में मरण हो सकता है। उसके अवश्य कीर्ति का उदीर्णा काल एक समय पाया जाता है, यह काल उत्तर विक्रिया से भी पाया जाता है, ये हमने देखा ना, उत्तर विक्रिया करने वालों में भी मूल शरीर में आया और यश कीर्ति का उदय चालू हो गया उदीर्ण, और मरकर अन्यत्र चला गया, वहां यश कीर्ति का उदय शुरू हुआ। इसी प्रकार दुर्भग व अनादेय नाम कर्मों के भी एक समय रूप उदीर्णा काल का कथन करना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तमान उदय वाली प्रकृतियां है, समझ में मत, इनका उदय पलट सकता है।
तो पांचवे से चौथे में आएगा और एक समय में मरण होगा तो वो देव में जाएगा, तो उसका
क्या क्या क्या,
पांचवे से चौथे में आया यश कीर्ति दुर्भग और अनादेय, उसका एक समय के लिए उदय होगा, एक समय में मरण हो सकता है।
अभी मरण कैसे होगा?
अंतर्मुख पश्चात ही होगा,
सासाधन में होगा
नहीं, पांचवे से चौथे में आएगा तो अंतर्मुख पश्चात ही मरण होगा।
आगे बढ़ते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से वर्ष पृथक्त्व। हमने देखा था तेरहवें में जो तीर्थंकर प्रकृति वाला है वो तेरहवें में तो वर्ष पृथक्त्व तो रहेगा ही रहेगा, सामान्य केवल एक अंतर्मूर्त तेरहवें पार करके चौदहवा पार करके सिद्ध हो सकते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उसका उदय तो मिनिमम इतने वर्षों तक चलेगा ही चलेगा, और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है, यानी आठवें साल के बाद संयम धारण किया केवल ज्ञान हुआ तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, तो उर्वरित आयु प्रमाण वहां रहेंगे चौदहवें का छोड़कर, वैसे चौदहवें में उदीर्णा नहीं है, तेरहवें के अंत समय तक का काल लेना है। नीच गोत्र का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उच्च गोत्र से नीच गोत्र को प्राप्त होकर वहां एक समय रहकर द्वितीय समय में उच्च गोत्र का उदय होने पर एक समय उदीर्णा काल पाया जाता है।
समझ में नहीं आया, एक आयु में तो एक बहु में उच्च गोत्र का या नीच गोत्र का उदय
नहीं, मनुष्यों में अलग होता है एक्चुअली,
सो परिवर्तन हो सकता है
मनुष्यों में, ये ऐसे ही ले सकते हैं ना, जैसे वो सासाधन में आ गया पांचवे में से वो, हाँ वैसे मनुष्यों में हो सकता है, क्योंकि तिर्यंचों के तो नीच का नीच ही गोत्र है, नारकियों के नीच गोत्र का ही उदय है,
मनुष्य के लिए था, वहाँ पे उच्च गोत्र से नीच गोत्र एक पव में हो सकता है,
हाँ होता है, नीच से उच्च होता है, देखा है ना आपने, पांचवे में जाता है तो उच्च गोत्र हो जाता है उसका, नहीं नहीं उसका उदय रुक जाता है नीच गोत्र का, नीचे उसका नीच गोत्र वाला कोई मनुष्य है और पांचवे में गया तो उसका उच्च गोत्र हो जाता है, वो तो तिर्यंचों में, मनुष्यों में तो अलग है, यह संयम से लाना ना नीचे, उसमें क्या है, जैसे अभी हमने देखा था उत्कर्ष से वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, नीच गोत्र की बात है, यानी एक केंद्र में रहा तिर्यंचों में रहा, उच्च गोत्र का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उत्तर शरीर की विक्रिया करके एक समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल पाया जाता है।
नीच गोत्र का उदय हो गया,
उच्च गोत्र
नहीं, मूल शरीर में वापस आए तो एक समय के लिए बताया, तो उत्तर शरीर में क्या नीच गोत्र का उदय हो गया?
आप कहाँ की बात पढ़ रहे? मैंने अभी उच्च गोत्र की बात पढ़ी।
उच्च गोत्र का एक समय उन्होंने मूल शरीर में किया, एक समय के लिए
उत्तर शरीर में किया।
उत्तर शरीर की अभिक्रिया करके एक समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अच्छा, उत्तर शरीर में
मरण हुआ एक समय में, यानी उत्तर शरीर बनाया वो उच्च गोत्र वाला हुआ था और एक समय में मरा।
उत्तर शरीर
विक्रिया करके एक महीने में मरा, तो उत्तर शरीर को उच्च गोत्र लिया।
विक्रिया करता है वहां पे भी हमने देखा छह पर्याप्ति होती है,
तो
छह पर्याप्ति में एक समय में मरण हो सकता है वहां पे विक्रिय शरीर का?
उत्तर शरीर में हो सकता है, आहारक में तो नहीं होता है, उत्तर शरीर में हो सकता है। वो जो मूल औदारिक शरीर के जो गर्भ में आने पर होते उसकी बात नहीं है, उत्तर विक्रिया के लिए मरण हो सकता है। नीच गोत्र का भी जघन्य काल एक समय मात्र इसी प्रकार से घटित होता है। देखो ऊपर जो हमने देखा था ना नीच गोत्र को, वहां विक्रिया से भी नीच गोत्र को ले लिया है। फिर से देखो विक्रिया जो की, विक्रिया में भी नीच गोत्र की बात हो सकती है। तीर्यंच विक्रिया, तीर्यंच या वायु का एक जो है वो करेंगे विक्रिया भी, पर वायु का एक मरकर उच्च गोत्र को कहाँ प्राप्त हो गया? अन्य तीर्यंच को लेना, रेगुलर तीर्यंच को लेना। सभी करते हैं ना, पंचेंद्रीय तीर्यंच करते हैं ना, अरे पंचेंद्रीय तीर्यंचों ने विक्रिया निज गोत्र की वाले की। उच्च गोत्र का उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण, जैसे हमने वहां ऊपर यशस कीर्ति का देखा था, इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ। आदेश का कथन जानकर करना चाहिए जो हमने नहीं किया। अभी आदेश है ना, मार्गणाओं में लगा के बैठो सब, तो उनका जो काल है केवल मार्गणा का काल नहीं, उसमें उसको उदय की भी बात सोचनी हमको। हाँ, अब अंतर की, हाँ सागरोपम शतपृथक्त्व उदय कंटिन्यूस, उसमें विग्रह गति को भी इंक्लूड कर देना। यानी उच्च गोत्र का उच्च गोत्र में रहानी और ये यश कीर्ति शुभ होता उसी का उदय होता रहा, यही लेना है। मनुष्य में भी, मनुष्य तीर्यंच में भी है, तो अकेले सम्यक्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि सागरोपम शतपृथक्त्व में कहाँ सम्यक को लेना। हाँ बीच में हो जाए तो उसके कोई निषेध तो है ही नहीं है ना उसका। हाँ जैसे हमने पुरुष वेद का उदय देखा वैसे इनका अलग अलग से समझना, यानी चार लेने, उच्च गोत्र है, यश कीर्ति है, शुभ गय और आदेय है, सबके लिए सागरोपम शतपृथक्त्व लिया उन्होंने। अब 68 पेज पर आते हैं। एक जीव की अपेक्षा अंतर, देखो अंतर में कैसे समझना, उदीर्णा कर रहा था फिर उदीर्णा रुक गई और फिर उदीर्णा शुरू हो गई। अब देखो जो ध्रुवोदय है जैसे ज्ञानावरण है, उसकी उदीर्णा कब रुकती है? 12वें के अंत में, तो उसमें अंतर नहीं होगा एक जीव की अपेक्षा। जो जो हमने देखे 12वें में जाकर और ध्रुवोदय है उसका भी अंतर नहीं होगा वैसा। देखो पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजस्व कार्मांचरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, स्थिर अस्थिर, शुभ शुभ निर्माण और पांच अंतराय, इनकी उदीर्णा का अंतर नहीं होता क्योंकि ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। हमने ध्रुवोदयी केवल नाम कर्म की देखी थी, पर ज्ञानावरणादि ये भी ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा और प्रचलना की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य व उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त मात्र है। ओ
देव में चाहता है तो उसको निद्रा प्रचलना का उदय हो सकता है?
हो सकता नहीं, होता ही है। अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उसका उत्कृष्ट अंतर ही अंतर्मूर्त बताया है।
हाँ, मेरे देव में तो उसका उदय
ज्ञान वृद्धि का होगा, अंतर
तीन का होगा।
तीन का नहीं, तीन की बात नहीं, निद्रा प्रचलना की बात पूछ रहे आप। तीन का तो बाद में है, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं उसको। देखो, निद्रा और प्रचलना की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य वो उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त मात्र है, तो वो घंटे डेढ़ घंटे में स्वाध्याय वाक्य नहीं है। निद्रा पयलानम अंतरम जहन्न मुक्कसम पी अंतमुत्तम। अच्छा हाँ, वो एक वाक्य डालिए, देखो मैं पढ़ती हूँ, आप लिखना। निद्रा और प्रचलना की उदीर्णा का जघन्य व उत्कृष्ट भी अंतरकाल लिखो बीच में, उदीर्णा का अंतरकाल का अंतरकाल जघन्य व उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त मात्र है। वही तो मैंने कहा, डेढ़ घंटा स्वाध्याय चल रहा है, बीच में निद्रा प्रचलना का उदय आकर चला जाता है, एक समय दो समय हो सकता है ना, एक दो समय भी। हाँ, हम कहते हैं ज्यादा ड्राउजी फील हो जाता है बीच में कभी तो। हाँ, अंतर्मूर्त में नियम से निद्रा प्रचलना का उदय होगा। वो छोटा कितने हैं, एक समय दो समय भी होगा ना, ऐसा कुछ लगा जैसे हमें टिमकारते आंखें, वैसे होगा उसका उदय, आंखें चला जाता होगा, वो भी असंख्यात समय होते हैं ना उसके अंदर। अभी निद्रा निद्रा की बात है, निद्रा निद्रा प्रचलना प्रचलना स्थान वृद्धि का वह अंतरकाल। अभी हमने देखा था इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होती तब तक उसका उदय नहीं होता, एक बात। देवों में नारकियों में उसका उदय नहीं होता, वो भी बात की थी हमने, याद है ना आपको। हाँ, तो निद्रा निद्रा प्रचलना प्रचलना स्थान वृद्धि का वह अंतरकाल, ऐसे भी उसकी उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है? छठे में, ऊपर जब रहेगा तब भी उस, हाँ तो ऊपर रहकर फिर देव में भेज देना। जघन्य से अंतर्मूर्त, वैसे तो अंतर्मूर्त होता ही उदय नहीं है, उसके उदय ही नहीं है। और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त से अधिक 33 अग्रोपम नहीं, हमने देखा अनुदीरक में, देखो देखो निकाल। हाँ, निद्रा प्रचलना है बिल्कुल एक अंतर्मूर्त, ये तो नियम से बताए ना। हाँ, वो जो कुछ है वो, क्योंकि निद्रा और प्रचलना कैसे अत्यंत तरल निद्रा है, वो तो नींद जैसी नींद नहीं है, वो नींद जैसी नींद नहीं है, परंतु ऐसे क्योंकि देखो निद्रा प्रचलना का उदय तो बारहवें के उपांत समय तक बताया, यानी वो कैसी वाली होगी, देखो इमेजिन तो करो ना। हाँ, उनके हमारे 24 घंटे हैं तो उनका तो कितना बड़ा काल है ऐसे। हाँ हाँ, वैसा जैसे हम आंखें बंद करके खोलते हैं इसमें क्या होता है, वैसा ही ले लेना उसमें, यानी वो कैसे मोमेंट्री होता है ना, यानी वो ख्याल में भी नहीं आवे कि ये निद्रा का उदय हो गया, प्रचलना का हो गया। हाँ, इस तरह से हो सकता है उसका। बिल्कुल,
तो ये निद्रा प्रचलना का उदय तो इतना काल तक हम लोग का जागृत अवस्था चली जाती है।
हाँ, वही ने वो इसीलिए ड्राउजी कहा ना, पर वो छोटा इतना काल है, वो काल इतना छोटा है कि नहीं कि बड़े नहीं, वो तो जैसे उसका एहसास भी नहीं हो जावे इतना होगा। अभी डिटेल्स तो केवल ज्ञान होने पर, आपके सारे प्रश्न तभी मिटेंगे जब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा।
मेरा आपको पढ़ाई करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ ना, तो मेरा जब भी उपयोग छूट जाता है ना तो मेरे को गुस्सा आता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है।
अच्छा है कि किसी को प्रेरणा में इन पर गुस्सा नहीं करते। हाँ देखिए अभी थोड़ा एक पैराग्राफ पूरा करते इतना। यहाँ यहाँ थे ना, अरे कहाँ गए मेरा, नहीं नहीं मेरा प्रश्न ये मेरा पेज उलट गया। निद्रा निद्रा की बात देख रहे थे। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला सांग विधि का अंतरकाल जगन्य से अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त जब सो रहे ना तो अंतर्मूर्त में पलट कर वो फिर आ सकते हैं, और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त से अधिक 33 सांग्रूपम प्रमाण है, यानी वो तो छठे से ऊपर श्रेणी में गया और फिर वहां मरण करके देव में गया, ऐसा ही ले सकते हैं। नरक में पन वो तो हाँ नरक में भी ले सकते हैं क्योंकि नहीं वहां से ले गया है पंचेंद्रिय तिरेंच में, और इंद्रिय पर्याप्ति का काल उसमें ऐड कर सकते हैं, और यहाँ तो दोनों ओर ले सकते हैं। अब साता वेदनी की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम प्रमाण, जो असाता का उदीर्णा का काल देखा वो साता का अंतर देना। गति के अनुवाद से साता वेदनी की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही है, अंतर भी अंतर्मूर्त है, यानी किसी गति में गति मार्गणा की अपेक्षा किसी गति में है और उसका अंतर काल लेना है, यानी कोई साता वेदनी का उदीर्णा का अंतर कब कहेंगे, बीच में असाता की उदीर्णा की और फिर वापस उसमें आ गया। काल हमने एक समय लिया था पर अंतर अंतर मूर्त ले रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, यानी वहां किसी भाव में वो तो एक समय कैसा काल लिया था, साता असाता का उदय पलट तक, अभी कोई असाता का उदय शुरू हुआ और मरकर कहीं अन्यत्र गया, वहां साता का शुरू हुआ तो असाता का एक समय वहां घटित हुआ था, पर एक ही भाव में रहते हुए वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त रहेगा।
तो एक समय भरण की अपेक्षा,
हाँ वहाँ ऐसे लगता है साधिक 33 सागर जो लिया है
वो तो नरक की अपेक्षा था,
हाँ उसमें गति की अपेक्षा नहीं ली थी, दोनों ओर के अंतर्मूर्त बढ़ाए थे, एक ही गति में साता का उदीर्णा और असाता का उदीर्णा के बीच में अंतर कब होता है, साता के लिए अंतर कब है जब असाता की उदीर्णा कर रहे हैं, असाता के लिए अंतर कब है जब साता की उदीर्णा कर रहे हैं। दोनों ओर उसका असाता का उदय बढ़ाया था। अब जो हमने साता का काल देखा था 6 मास, वो असाता का अंतर में लेना, यही लिखा है असाता वेदनीय का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट 6 मास प्रमाण है, और मनुष्य गति में असाता की उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। देखो देखो मनुष्य गति में उदीर्णा का अंतर लेना है, छठे तक है,
छठे में आया और एक समय में
मरकर देव में गया, पर अंतर लेना है काल नहीं, अंतर एक समय का लेना है। मनुष्य गति में असाता की उदीर्णा का अंतर
तो छठे से सातवें में गए और एक समय में बन गए,
असाता की उदीरणा थी। असाता की उदीरणा हो रही थी, फिर बीच में नहीं हो रही है और फिर होने लगी, ऐसा यू लेना है ना?
हाँ, तो असाता की उदीरणा वो छठे में कर रहा था। नहीं, ये समझ में नहीं आया कुछ।
यानी मनुष्य में वो साता का असाता का हो सकता है एक समय में, बाकी अन्य गतियों में नहीं हो सकता, यही लेना है ना? और वो भी छठे की अपेक्षा ही लेना पड़ेगा वहां कुछ, ये ख्याल में नहीं आया, कल इसकी चर्चा करेंगे जरा। हाँ, इसीलिए यानी एक समय में वो चेंज नहीं होगा, बस इतना अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। अभी कल बाकी चीज चर्चा करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो भूलो। अश्विन